सत्यवचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु के वचनों में और इसकी संगति में बढ़ रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने कुछ मुख्य विषयों को देखा था। जिसमें हमने मिलाप वाले तंबू के तख्ते और चूल्हे, होमबलि की वेदी तथा बर्तन, निवास स्थान का आंगन और दीपदान का तेल, इन विषयों पर हमने विचार किया था। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे। हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अलग किया जाना, एपोद, सीनावंद या चपरास, उरीम और तुमीम मुकुट और याजकीय वस्त्र, हारून एवं उसके पुत्रों का पुरोहित पद पर अभियंजित किया जाना अर्थात अभिषिक्त किया जाना। मित्रों, हमें ज्ञात है कि तंबू का प्रत्येक तार या धागा, रंग व अनेक वस्तुएं ख्रीष्ट के व्यक्तित्व एवं कार्य की ओर इशारा करते हैं। अब उनके विषय जो निवास स्थान में सेवा करने जा रहे हैं, लेवीय लोगों को भी तंबू के निवास स्थान की देख रेख करनी है तथा हारून और उसके पुत्रों को पुरोहित बनना था और हारून का चयन और महायाजक बनना। मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता मांगें ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीष को पा सकें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो दुखी और निराश हैं, किसी प्रकार से चिंता या तनाव में हैं, प्रत्येक को अपनी शांति दीजिए और आज के इस वचन के द्वारा से हर एक से बातचीत कीजिए ताकि प्रत्येक का जीवन आपकी आशीष के द्वारा से शांति को प्राप्त कर सके। इस समय हमारी सहायता करें ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 28 अध्याय और उसके 1-2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। मित्रों, पुरोहित पद पर कार्य करने के लिए हारून को वस्त्र विशेष की आवश्यकता थी। यह सभी वस्त्र भी ख्रीष्ट के बारे में बोलते हैं। यह भी सच है कि निर्गमन की पुस्तक में अधिकतर आदेश पढ़ने में रोचक नहीं है और न ही किसी जासूसी उपन्यास अथवा रहस्यमय कहानी का आनंद प्रदान करते हैं, परंतु मसीह के संबंध में अनेकों रहस्यों को प्रकट करते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि परमेश्वर ने इस प्रकार के आदेश क्यों दिए? छोटे बालक चित्रों द्वारा पढ़ाई करते हैं। बाइबल एक चित्र पुस्तक है और उसके द्वारा परमेश्वर हमें बड़ी सच्चाइयों को सिखाना चाहते हैं। जो तस्वीर उसने हमें दिखाई, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। मेरे मित्र, ये वस्त्र आदि उस प्रकार के पवित्र नहीं कहे जा सकते हैं जैसा कि आजकल हम समझते हैं। इब्रानी भाषा में पवित्र का अर्थ अलग किया हुआ है, अर्थात अलग किए जाने से है। ये वस्त्र परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए अलग किए गए हैं और प्रत्येक वस्तु जो परमेश्वर के लिए अलग की गई है वो पवित्र है। मान लीजिए कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं और उसमें से 1 आप प्रभु को देना चाहते हैं। आपने भले ही यह 10 रुपए किसी भंडार गृह से प्राप्त किए और उस भंडार गृह ने किसी जुआड़ी से और उसे भी वे पैसे किसी वेश्या से मिले जिसने उन्हें किसी चोर चालाक से पाए, परंतु जैसे ही आपने उस पैसे को परमेश्वर के लिए अलग किया वह पवित्र ठहरा। कुछ भी हो जो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है वह पवित्र है। यह पवित्र वस्त्र है और उन्हें ईश्वर की सेवा में प्रयोग करना है। मित्रों, मैं एक लेवी के समान ढीला ढाला कपड़े नहीं पहना, परंतु मैंने एक दूसरे कपड़े सिलवाए और इसे पवित्र सूट के संबंध में अक्सर अपने मजाकिया दोस्तों के द्वारा छेड़खानी को झेलता था। जब मैं प्रचार करता तो इस पवित्र वस्त्र को धारण करता था। मेरी समझ में यह ठीक भी है क्योंकि ईश्वर पवित्र है और जो कुछ हम उसकी सेवा में अलग करते हैं वह भी पवित्र बनता है। ध्यान दे कि ये वस्त्र या परिधान सुंदर हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। मुझे यह बात पसंद भी है क्योंकि हमें अजूबा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा के लिए उपयुक्त हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे शिकायत है क्योंकि प्रत्येक सुंदर वस्तुओं पर शैतान, संसार और स्वार्थ हावी है। हम सुंदर वस्तुएं ईश्वर तक क्यों नहीं लाते? उसी ने तो हमें सब कुछ दी है, अर्थात सुंदरता की रचना भी। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि वही सृष्टि में रंग बिखेरता है, अर्थात सूर्य का अवलोकन करें, पतन के समय पत्तियों को झड़ना देखें, किसी स्वच्छ रोशनी वाले दिन में आकाश की ओर दृष्टिपात करें, तूफान का नजारा देखें। मित्रों, परमेश्वर सुंदरता और रंग बिखेरने में आदित्य है और पुरोहित के लिए ये परिधान भी स्वच्छ एवं सुंदर तथा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पर है। हम निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। मित्रों, हारून को एक महायाजकीय सेवकाई सौंपी गई और उसके लिए निम्न प्रकार के वस्त्र होने चाहिए उसका वर्णन है। आगे हम निर्गमन 28 के 4 पद में पढ़ते हैं, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंध और एपोद और जामा, चार खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ 3 परिधान हैं जो परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होना है, उन्हें हारून द्वारा पहना जाना है और निसंदेह ही उस व्यक्ति को हस्तांतरित करना होगा जो उसका स्थान ग्रहण करेगा। हम निर्गमन उसके 28 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं, और वे सोने और नीले और बैजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। मित्रों, इन वस्त्रों का सृजन सबसे अच्छे पदार्थों से होना है। मेरा मानना है कि हमें ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ प्रदान करना है, परंतु मैं मान लेता हूँ कि हमें इस विषय पर बहुत सावधानी बरतना चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी ऐसे कार का प्रयोग नहीं किया जो बहुत महंगी व शानदार हो, यहाँ तक कि मेरे पास कार भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बहुत महंगी कार खरीद कर देने का वायदा किया, पर मैंने उसे मना कर दिया। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वह सेवरलेट गाड़ी चलाता है, परंतु उसे अधिकार है कि वह सबसे महंगी गाड़ी भी चला सके। मित्रों, ऐसे फैसलों में मुझे सावधानी बरतनी होगी। इसी वक्त मुझे एक ऐसे मसीह प्रचारक की याद आती है जिसके शान शौकत से रहने के कारण अधिकतर लोग उसकी आलोचना करने लगे थे, क्योंकि एक दिन जब लोगों ने उसके घर और दफ्तर में जाकर देखा कि वहां चारों ओर अनेक सुंदर और महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। जिस प्रकार की सेवकाई से यह व्यक्ति जुड़ा था उसमें लोगों से विनती और मांग की जाती थी कि वे गरीबों के उत्थान और मदद के लिए दान दें, और लोगों को दुख हुआ कि जिस अभिप्राय से उन्होंने दान लिया, अर्थात लोगों ने उसको दिया ताकि उसका सही उपयोग हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पैसा जो सेवकाई के लिए दिया जाता है उसका प्रयोग नासमझी से नहीं होना चाहिए। दान प्राप्ति को हमें सावधानी से काम में लाना होगा। मित्रों, मैं सदैव ही पैसे के मामले में बहुत सावधान हूँ, क्योंकि मैं लोगों से रेडियो प्रसारण के बारे में दान की अपील करता हूँ। इसी कारण साधारण गाड़ी चलाता हूँ, अर्थात वो भी 2 चक्के, और जब भी कोई बढ़िया या महंगी गाड़ी भेंट करना चाहते हैं तो मैं उसे भुलाने को कहता हूँ, अर्थात सावधानी पर ध्यान दिलाता हूँ। परंतु साथ ही हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ भेंट देना है। जब हम अपने मुख्यालय में आए तो हमें सब साज सज्जा का फैसला लेना है। किसी भी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करें, परंतु उस पर ध्यान दें कि वह कैसी है। क्या रेडियो प्रसारण की मशीन सस्ती होनी चाहिए? किंतु नहीं, क्योंकि महंगे टेप अच्छे मशीन पर चलेंगे जो महंगे भी हैं। हमारा मानना है कि ईश्वर की सेवा के लिए सबसे अच्छे सामान की जरूरत है। मेरा विश्वास है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे आप समझते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर अनेक बार हमसे लूटा और ठगा जाता है। मलाकी नबी ने एक प्रश्न पूछा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। मित्रों, दशमांश और उठाने की भेंटों में हमने लूटा है। परमेश्वर जानता है कि कौन मनुष्य उसे धोखा दे रहा है। मूसा के दिनों में इस प्रकार के लोग थे और आज भी ऐसे ही कई लोग पाए जाते हैं। हम आगे देखते हैं एपोद, जिसे हम निर्गमन उसके 28 अध्याय के 6-9 पद में पाते हैं। लिखा है, और वे एपोद को सोने और नीले बैजनी लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो, और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें, और एपोद पर जो कढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले बैजने और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। मित्रों, एपोद की व्याख्या करना कठिन है। यह कपड़ों के परिधान के ऊपर पहना जाता था। 2 लंबे कपड़े सटाकर जोड़ दिए जाते थे और कंधे के एक ओर एक मणि तथा कंधे के दूसरी ओर दूसरी मणि जड़ दी जाती थी, और वस्त्र के मध्य में उसे कमर में बांधा जाता था। इसराइल के पुत्रों के छह नाम एक मणि पर और शेष छह नाम दूसरी मणि पर अंकित थे। जब महायाजक परमेश्वर के समीप पहुंचता तो इन 12 पुत्रों को अपने कांधे पर रखता था। इसे महायाजक के शौर्य एवं शक्ति का पता चलता था। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त के संबंध में यूं लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित हैं। मित्रों, इस पर ध्यान से सोचें कि मसीह हमें बचाने में समर्थ हैं और उसके पास शक्ति और सामर्थ है। क्या आपको एक छोटी भेड़ का दृष्टांत याद है? गड़ेरिया उसे ढूंढने निकलता है और जब वो उसे पा लेता है तो उसे अपने कंधे पर बैठा ले आता है, जिसे हम लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1-7 पद में पाते हैं। यीशु मसीह मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले जाता है। मित्रों, मैं समय असमय उसके कंधे से हट जाता हूँ, परंतु वह पुनः उसे सुरक्षित जगह पर मुझे रखता है, अर्थात उसके कंधे पर बैठा कर लगातार लिए चलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का यह कितना सुंदर चित्र है जो हमें एपोत के द्वारा से प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, हम आगे देखते हैं सीना बंद या चपरास। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय उसके 15-16 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद की नाई सोने और नीले वैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो। मित्रों, इस सीनाबंद को वर्णन करने में सबसे अच्छा नाम पोशाक चपरास कहा जा सकता है। यह अति सुंदर पोशाक है जिसे अन्य वस्त्र के ऊपर पहना होता है। यह न्याय की कमरबंद थी, लेकिन क्यों? मित्रों, इस चित्रण से प्रसारित होता है कि पाप का न्याय हो चुका है। विश्वासी होकर आज हमें धार्मिकता की झीलम अर्थात सीनाबंद कसना है, और आपको ज्ञात है कि वक्ष स्थल को ढकने वाला वस्त्र झीलम भी कहलाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर पाने के लिए केवल एक ही उपाय है। इसका अर्थ हमारे पापों का न्याय चुकाया जा चुका है, अतः इसको न्याय का सीनाबंद या झीलम दिया गया है। मित्रों, वास्तव में तो सीनाबंद या चपरास एपोत का ही भाग है। एपोत व चपरास एक साथ जुड़े हैं और देखने में अति सुंदर हैं। हम निर्गमन उसके 28 और उससे 17-20 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और उसमें 4 पांति मणि जड़ना। पहली पांति में तो माणिक्य, बदमराग और लालड़ी हो। दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। मित्रों, महायाजक इस सीनाबंद अर्थात झीलम पर 12 मणि जड़े थे, जो 3-3 की पंक्ति में 4 लाइन में जड़े थे। तब हम आगे पढ़ते हैं 28 के 21 पद में, और इसराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदें। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। मित्रों, इन अनमोल पत्थरों अर्थात मणि का उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी मिलता है, जहां से यह ज्ञात होता है कि नए यरूशलेम की नींव पर भी यह पत्थर रखे गए थे। प्रत्येक पत्थर का रंग विभिन्न और सभी तो मिलकर एक सुंदर दर्शनीय रूप प्रस्तुत करते थे। मेरा मानना है कि परमेश्वर की सारी सृष्टि आदित्य रंगों से सराबोर है, और अंत में जब पाप मिट जाएगा तो सारी सृष्टि पुनः रंगों से चमकाया अर्थात जगमगाया जाएगा। मित्रों, यह 12 पत्थर भी बहुत दिलचस्प है। जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में सीनाबंद अर्थात चपरास पहनकर जाता है तो यह चित्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का पिता की दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए विनती करने को दर्शाता है। प्रभु न केवल हमें ले जाते हैं अपने कंधों पर बैठा करके, जो उसकी एक योग्यता, सामर्थ्य और शक्ति है, वरन अपने सीनाबंद झीलम में चिपका कर ले चलते हैं। हमें उसने अपने हृदय में अंकित कर रखा है। वह हमसे प्रेम करते हैं और यह उनके प्रेम का कितना अद्भुत और अतुलनीय चित्र है। मित्रों, हम आगे और बढ़ते हुए देखते हैं उरीम और तुमीम। हम निर्गमन 28 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इसराइलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। मित्रों, मैं आपको एक गुप्त और रहस्य बताना चाहता हूँ और नहीं चाहता कि यह बात आप किसी और को बताएं। मुझे नहीं पता कि ये उरीम और तुमीम क्या है। मैंने लगभग 25 लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, परंतु बाद में पता चला कि वे भी इनके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। परंतु दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध कुछ ईश्वर की इच्छा के जाने से है। मुझे पता नहीं कि यह क्या है। कुछ लोगों का अनुमान है कि उरीम तुमीम पासा खेलने जैसी है, परंतु मुझे यह स्वीकार नहीं। पर जहां भी यह रखी जाती है, ईश्वर की इच्छा प्रकट करती है। परमेश्वर ने इसका ब्यौरा अच्छा किया है कि नहीं बताया, नहीं तो कोई धूर्त आजकल अवश्य ही उरीम तुमीम के जिक्र कर सभी प्रश्नों के हल का दावा करने का प्रयास करता। वर्तमान में हमारे चहुओं अनेकों लोग बिना उरीम तुमीम के भी अनेक प्रश्नों का उत्तर देने को सदैव तत्पर हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उसके समीप जाना होगा। आगे हम देखते हैं एपोद का बागा, निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 33 और 34 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैजने और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटी लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। मित्र, एक प्रचारक ने कैलिफोर्निया राज्य में सबसे पहला उपदेश अनार और स्वर्ण की घंटियों पर प्रस्तुत किया और मंडली को बताया कि अनार क्या होता है। इसका कुछ पता नहीं था। बाद में पता चला कि उनमें से कुछ लोग दक्षिणी भाग में के थे, जहां यह फल अधिक पैदा होता है। तो संध्या के 9 बजे तक उनके पिछवाड़े के आंगन में 20 किलो से भी अधिक अनारों का ढेर लग गया। तब उसे पता चला कि अनार क्या है। मित्रों, अनार फल की चर्चा करते हैं और घंटियां साक्षी की। हमारे जीवन में यह दोनों ही पाए जाने चाहिए। हमें मसीह के गवाह बनना है और आत्मा के फल से विभूषित होना है। हम पढ़ सकते हैं गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में। मित्रों, आपको ऐसे नहीं बांटना चाहिए। यदि आप इस संसार के लिए उचित परिचय तैयार नहीं रखते हैं या नहीं करते हैं, तो अनेक लोग गवाही देने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका स्वयं का जीवन गवाही योग्य नहीं होता है। निस्संदेह अनेक लोग अच्छे साक्ष्य हैं, पर वे गवाही देने बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे पास दोनों ही होना चाहिए, एक अनार व एक घंटी। तब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 28 उसके 35 पद में लिखा है, और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, और जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए वह बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। मित्रों, जीवन और साक्षी के दोनों चिन्हों अर्थात प्रतीकों को गूंजना चाहिए। जब महायाजक पवित्र स्थान के अंदर और बाहर घूमता है, तब कि वह मर न जाए, उसे सावधान किया गया है कि यदि धर्म विधि में वह गलती करेगा तो वह मार डाला जाएगा। मित्रों, हम निर्गमन 28 उसके 36 से 38 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इसराइली जो कुछ पवित्र ठहराए अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। महायाजक की ये परिधान अर्थात वस्त्र उसे अन्य पुरोहितों से भिन्न बनाते हैं, और हमारे महायाजक के वैभव, ऐश्वर्य एवं सुंदरता का बखान करते हैं, जिसे पवित्र, निर्दोष, अनपकारी तथा पापियों से अलग होना है। मसीह हमारे बचाने के लिए मृतक बना और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमें बचाए रखने को जीवित है। मित्रों, हम आगे निर्गमन के पुस्तक के ही 28 अध्याय और उसके 39 से 43 पद तक पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और अंगरखे की सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाना बुनवाना और एक पगड़ी की सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और कारचोबी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना, फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जंघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जंघियों को पहने रहें, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। मित्रों, परमेश्वर आराधनालयों में किसी प्रकार की नग्नता पसंद नहीं करते हैं, और इस बात को हमें आजकल लोगों को व स्वयं को स्मरण दिलाता है। शरीर का प्रदर्शन किसी भी प्रकार से ईश्वर को पसंद नहीं है। शरीर के कामों को ढकने के लिए ही इस प्रकार के वस्त्रों का परिधान बना है। यदि हम अपने शरीर के अंगों को प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की आज्ञा के या उसके पहरावे के विरोध चलते हैं। मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पापमय जीवन जिए। वो चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जिए और उद्धार का जीवन जिए। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक चुनौती है कि हम किस प्रकार का पहरावा इस वर्तमान समय में पहनते हैं। मेरे मित्रों, आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन इस बात को याद रखें कि परमेश्वर मुझे और आपसे चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जिएं, अपने पहरावे के द्वारा, वस्त्र को चयन करने के द्वारा। ऐसा न हो कि हम उसे दुख दें, परंतु ऐसा होने दें कि हम उसे अपने जीवन के द्वारा महिमा दे सकें। प्रभु आप सबों को ऐसा करने में अर्थात सही चुनाव करने में अच्छी समझ और बुद्धि प्रदान करें। मित्रों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस कार्य के लिए भी सहायता मांगे। हमारे जीवित प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें फिर से एक बार हमें बताया है कि हमें इस संसार में रहते हुए भी किस प्रकार के पहरावे को पहनना है, ताकि हम अपनी नग्नता को छुपा सकें और आपके पवित्रता में अपने जीवन को ढाल सकें। हमारी विनती है प्रभु, हम जितने भी आपके वचन को आज सुने हैं, हम सब की सहायता करें, मदद करें, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको आदर मिल सके। जिस प्रकार से आपने हारून को और उनके परिवारों को अपनी सेवा के लिए अलग किया, हमें और हमारे परिवारों को भी अलग करें, ताकि हमारे घर के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया, जब से मसीहा मेरे सजाया सजाया, जब से मसीहा मेरे